गंगाधराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो
शिव शिव शिवाय
चंद्रशेखराय नमो चंद्रशेखराय
नमो
चंद्रशेखराय नमो चंद्र गंगाधराय नमो ओम
गंगाधराय
नमो हर हर हराय नमो हर 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 हराय नमो शिवाय नमो
शिव
शिव शिव शिवाय नमो
शिव शिव
हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो नमो हर हर ॐ शिव शिव शिवाय नमो
शिव शिव शिवाय
चंद्रशेखराय नमो चंद्र गंगाधराय नमो गंगाधराय नमो हर हर हराय नमो
भजन में अधिक मत आप भजन में फंस गए जैसे मंदिर बनता है मंदिर के लिए लाखों रुपए दिए करोड़ों रुपए बस इसी में ही लग गए और अंतरंग वाली फंसी में नहीं गए इसको पत्नी दे भी अंतरंग नहीं देगी
ऐसे भाव रखे जाए कि राधा कृष्ण के लिए एक बगीचा बना रहे हैं और उसके लिए फूल इकट्ठे कर रहे हैं तो हम उन लोगों से फूल
होगी कैसे होंगे शास्त्र ने जैसा भली किया है भक्ति का और हमारे रूप को स्वामी किया है वैसे करने की चिंता आप पुस्तकों को केवल खूब अच्छी तरह से सजा करके रख रहे हैं तो पुस्तकों के विचारों को पढ़ते नहीं है तो आप कैसे पास होंगे पुस्तकों की रख रखाव भी से तो होगा नहीं उसके विचारों को पता नहीं होगा स्थिरता, अंतर भाव में अधिक स्थिरता। भक्ति भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव अभिरुद्ध और भाव विरुद्ध, सब पांच चीजों को विचार करके चल रहा। भावमय होना चाहिए। अब उसके लिए कुछ ऐसे अंग हैं जो उसके लिए अनुकूल है, कुछ हैं अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, जिनके करें भी तो भी कोई बात नहीं, ना करें तो भी कोई बात। ये अभिरुद्ध है,
जैसे आपने कहा था कुछ अन्य शास्त्र जैसे पद्म पुराण वगैरह पढ़ना, न वो विरुद्ध है न
अनुकूल है। आप ये पीपल वृक्ष की सेवा करते हैं, ये करें और न करें कोई हर्ज भी नहीं है, कोई लाभ भी नहीं, किंतु श्रवण कीर्तन इत्यादि जरूर करना चाहिए। कुछ अनुकूल है जैसे तिलक करना, तुलसी में पानी देना, भागवत इत्यादि पढ़ना, वैष्णवों की सेवा करना, ये अनुकूल है, ये भाव के लिए ये उसको बढ़ाते हैं, भाव वृद्धि करते हैं, सहायता करते हैं भाव के लिए।
तिलक अनुकूल है,
तिलक कंठी देना, तिलक करना, तुलसी में पानी देना, तुलसी की परिक्रमा करना, धाम में जाना, धाम की परिक्रमा करना, वैष्णव की सेवा करना, यह अनुकूल है। भावमय नहीं है अनुकूल, भावमय क्या है, कृष्ण मेरे प्राण के लिए वो मेरे सखा, ये भावमय। और ये भाव के अनुकूल क्या है, गुरु जी को से दीक्षा इत्यादि लेना, गुरु जी से शिक्षा लेना, गुरु को विषम रूप में उनकी सेवा करना, ये सब भाव संबंधी है। भाव के अनुकूल अभी बतलाया, तुलसी में पानी देना और ये सब करना, और भाव के अपरूप भाव सब पुराणों को पढ़ना, ब्राह्मणों को सम्मान देना, ये सब उसे कोई अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है तथस्थ। और भाव के विरुद्ध जो है उनको दूर करता है, ऐसा संग में कभी नहीं जाना चाहिए जो भाव के रूप में, जो भजन के विरोधी है उनका संग, द्वारका इत्यादि का ध्यान नहीं, अंग न्यास और मुद्रा नाश इत्यादि न करे। कृष्ण का भजन कर रहे हैं राधा जी के भाव से, और इधर में हनुमान जी की भी सेवा कर रहे हैं, ये क्या हुआ, विपरीत हो। इसलिए ऐसा ऐसा भजन धीरे 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 बढ़ता है।
मैं इसी संदर्भ में एक प्रश्न है, जरा थोड़ा सा वो भाव से ही पर मैं सोच रहा हूँ आज ना दिमाग थक गए, थक ही गया तो है इसी संबंध में भाव से ही प्रक्रिया भाव के संबंध में, तो चलते चलते तुम तुम्हारे कोई लाइट प्रश्न हो सकते हैं। गुरु तत्व पे आपने बहुत अच्छा व्याख्या की, इसी चीज पे लेके हम अपनी परंपरा को भी और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप तब भी एक बार जिक्र चला था
आप लोगों को भी कुछ जरूरत हो रही है
ना, पंखे की हल्की जरूरत है
थोड़ी सी, हमको थोड़ा सा हल्का
ये बात आपने हमें अभी समझाई कि कभी शिक्षा गुरु महत्वपूर्ण हो जाती है, कभी दीक्षा गुरु, ये इस बात पे निर्भर करता है।
एक ही तत्व है
कि कौन हृदय में भक्ति को वास्तविक रूप से संचालित
करता है, वही गुरु है। गुरु कौन है, वही जो भक्ति के भाव को संतोष हमारे हृदय में भर दिया, गुरु का सम्मान उसी को देना।
अभी कभी कभी हमारे यहाँ जैसे इस्कॉन में विशेषकर आपने इस चीज का जिक्र भी किया है, जो स्पिरिचुअल टॉक्स दी जाती हैं, आध्यात्मिक क्लास दी जाती हैं, मोस्टली वो ऊपर के लेवल पे है कि माया की चीज़ें हमें त्यागनी चाहिए, भौतिक जगत में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, सबके मालिक कृष्ण हैं और किस तरह से भौतिक जगत जो है वो अनर्थ है, ये बात की जाती है। अभी भाव का जिक्र कृष्ण प्रेम और भाव का,
ऐसे अधिकारी साधारण स्थिति में तो होते नहीं, उनको इससे अधिक कुछ बतलाया नहीं जा सकता और बतलाने वाले भी अधिकांश ऐसे ही
रहते। तो अगर कोई व्यक्ति खाली इन्हीं चीजों को बतलाता है तो इसे सही मायने में जो आपने कहा था वो प्रचार नहीं माना जाएगा जो जो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता है। शुद्ध भक्ति के अंतर्गत वो आता है जिसमें कृष्ण की भाव में सेवा के प्रति लोलुपता और लोभ पैदा होता चला जाए।
ये असल प्राण है।
महाराज, जाप करते समय मैं व्यक्तिगत रूप से आपके आगे अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे ऊपर सत्संग का प्रचार का काफी बोझ है, तो कहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये विचार आते हैं, या फिर दूसरे विचार आते हैं महाराज, जो अभी तक जाप करते समय भगवान के आगे मुझे अपनी असमर्थता के भाव आते हैं कि मैं असक्षम हूँ, भगवान मुझे सही मायने में सेवा के लायक बनाओ और मेरे अंदर कोई भी अनर्थ विचार ना आए। ये इसी तरह की एक प्रार्थना मैं कभी कभी करता हूँ। तो इस ऐसी प्रार्थना को वंदना और भक्ति का अंग स्वीकार किया जाए या खाली चुपचाप जाप करते रहना चाहिए, ये प्रार्थना उचित है?
आप एक तरह से इतना तो जाप कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो चटनी अचार सभी चीजें, रोटी दाल सब्जी, एक सब्जी नहीं तो दो सब्जी, कुछ भाजा, कुछ खीर, कुछ मिठाई, ये सब तो लेते हैं। क्यों लेते हैं? केवल चाल से ही आपकी पुष्टि हो जाए,
विविध जाते हैं
इसलिए कि तरह तरह की चीजें खा करके पुष्टि और पेटी भर जाता है। सब तरह की चीजें भूल जो है केवल अन्न में नहीं है, सब चीजें से आएगा। तो इसलिए एक प्रकार का आप जानते ही सारा दिन कर आपसे नहीं रुचि में नींद आ जाएगी, इसे जब उसे थोड़ा सा ये हो जाए तो कुछ वो कर दी, कुछ दूसरों को सुनाइए, कुछ अर्चन कर दिया, कुछ भजन कर दिया, कुछ कीर्तन कर दिया, इस तरह से एक ही भक्ति के ये तरह तरह के चीजें प्रिपरेशन है। एक ही खाद्य के तरह तरह के प्रिपरेशन हैं ना, ऐसे ही भक्ति एक ही है, भावना एक रहेगी किंतु उसके प्रिपरेशन जो है उसमें टेस्ट और ये सब हारमोनियम ले लिया, बिना हारमोनियम का करताल और खोल दे लिया और स्वर में स्वर मिला कर भजल रे मन श्री नंदनम दन अभय चरण रे होते होते भीतर से भाव आया और आप चाहे अकेले हो चाहे अकेले ऐसा मन बदल गया। उसके बाद में हरे कृष्ण कृष्ण इस तरह से बदलते थे। थोड़ी देर के बाद में जब नाम कर रहे हैं तब एक और बात, हे कृष्ण करुणा सिंह दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिता संत राधा कांत नमस्ते राधे वृंदावनाधीश करुणामृतवाणी कृपया निज पादाब्ज मह्यं प्रदीयताम्। फिर आगे आप करुणा की आप अपनी चरणों की सेवा हमें दे सकते हैं दास के साथ कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब तो भजन हो गया। तो श्लोक बहुत सहायता करते हैं, किंतु भाव से आशा भरई अमृत सिंध मय कथम कालो मया सुगमिता किल संप्रतम ही पंचे कृपा मई विधास्त नैव किं प्राणे पजीन परो रूपकार। हे करुणा सागर, क्या मुझे हम प्रार्थना नहीं करें, यदि कृपा न करें, आपने ये प्रतिज्ञा कर ली तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं कि अब प्रतिवाद छोड़ू। कृष्ण से भी मेरा क्या संबंध है, वो कृपा भी करेंगे तो हम उस कृपा को अस्वीकार करेंगे, और ये शरीर से ही मुझे रह करके क्या करना है, जो मैं तुम्हें छलन करा कर इस शरीर को छोड़ा। और तुम उस समय में हाय हाय करके हमारी एक सेविका थी, हमने कृपा नहीं की, इसकी लज्जा भी तो आपको रखनी है। मैं अयोग्य हूँ ये बात तो ठीक है, किंतु तुम्हारे कृपा के सहारे में बचूं। मेरी आशाएं बड़ी सागर के समान थी, आशा भरी अमृत सिंधमय, कैसी कैसी आती से बात, और आपकी कृपा का टक्कर हमारी तरफ नतीजा के हमारे घर में कृपा की वर्षा कर ऐसे ऐसे प्रार्थना बिना मुक्त पुरुष वे ऐसी प्रार्थना ही नहीं आएगी। ये भजन करते समय में और बीच में प्रार्थना होती है,
श्लोकों का और उनको याद करना बड़ा अच्छा है।
कभी कह दिया आसाम हो चरण रेणी कुसाम हम क्या वृंदावने सजन आर्य पथन चेजे मुकुंद पदार आशा महो चरण रेणी मेरी बड़ी आशा बड़ी सुंदर है, तो पति तो आशा मिलती जाए यदि मेरे जीवन में गोपियों की चरणभूमि को प्राप्त करने के लिए बजने कहीं भी लता गुण और तृण होकर के जन्म, तृण की बात नहीं, एक पत्थर होकर के जन्म गई और गोपियां जा रही आकर के पैर में धूल लग गई, पानी ढाल दिया पैरों पर और उसको ऐसे ऐसे रगड़ रही, मैं वो पर पत्थर का टुकड़ा हो जाता जो गोपियों के चरण को रगड़ने का लिए हर पानी देता, जिनके चरणों की धूलि को छांकते छांकते खोलते खोलते श्रुतियों अभेद के मंत्र लोग पुरुष और स्त्री का रूप धारण करके कोटि जन्म तक तपस्या आराधना कर रहे हैं, उनको वो ये प्राप्त नहीं, किंतु वो गोपियां जिनकी चरण में धूलि जाती है, तो गोपियों ने चुटकी बजाई तक कृष्ण नाचने लगे, उनके पीछे पीछे चलते हैं जो उनकी चरण की धूलि उड़ करके हमारे सिर पर लग जाए, मैं प्राप्त हो जाए कैसी, इसको मैं पाने के लिए, इसे स्नान करने के लिए मैं बंदर में जा कहीं भी कोई कहते कहते रोने लगे, भाव में चिंता है, वो हमारा ऐसा स्वभाव होगा, और फिर बोलिए हरे भावना क्या हो, हरे मने कृष्ण जिनको हरण करके कुंजों में ले जा रहे हैं वो श्रीमती राधिका जी हरे हैं, कृष्ण हरण कर रहे हैं, कृष्ण है ना जिनको हरण कर रहे हैं,
राधिका जी
कहाँ
कुंजों में,
कहाँ कौन कुंज में, सेवा कुंज में ले जा रहे हरण करके क्या करें, पहले उनका श्रृंगार करें, वो श्रृंगार बट क्या करें, पैरों में अवतार लगाएं, अवसर में लिखेंगे कृष्ण कृष्ण चारों तरफ में,
अच्छा
इस तरह से हरे कृष्ण के अंदर में क्या नहीं भावना है, और वही सबको आंख बंद करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण देखिए और भगवान का नाम कीजिए, देखिए तो कृष्ण एकदम आ जाए, ये सब भजन के गुण रहा है, इसको दिया है
सपने में,
इसको सुना दी इतना सुंदर भाव
ऐसे महाराज एक दो भजन और सुना दीजिए वो आपके लिए भी रिलैक्सिंग होकर हमारे को भाव में डालेगा
तो ये सब तो वही कुछ
ऐसे कोई इस प्रशावली वगैरह थे ना सुना दीजिए
सब कीर्तन में ऐसे ही भाव हम कीर्तन तो करते हैं भाव बढ़ाने का जसोमते नंदन में कीर्तन है जानते हैं बोलिए तो
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान पूरा
जय जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान गोपी प्रणधन मदन मनोहर गोपी प्राण धन मदन मनोहर इसके कितने सुंदर अब एक एक शब्द में समस्त भागवत समाया हुआ है जसोमती नंदन ब्रजवर नागर ब्रजवर नागर माने क्या जसोमती नंदन माने क्या लाड़े माने क्या माने क्या जसोदा जी घर में मक्खन रखते और बटरों पर चलते हुए मक्खन निकाल करके खा लिया चारों तरफ में लगे अरे तूने मक्खन खा लिया तो नहीं मैंने मक्खन नहीं खाया तो ये लग गया तो बंदरों ने लगा दिया तू चोर है तो मैया हमारे वंश में चोर नहीं है तेरे वंश में कहीं चोर हुआ होगा तू झूठ बोलता है मैंने तो कभी झूठ सीखा नहीं तुमने झूठ मुझको सिखलाया कि नहीं हमको शिक्षा देने वाले तो तू ही है तो तूने झूठा सिखलाया होगा तो हमने ऐसे उनकी जो बाल चरित्र इत्यादि से संबंधित जो जसोदा नंदन ये जसोमती नंदन नंदन माने जसोदा को आनंद अपनी बाल क्रीड़ाओं के द्वारा जो जसोदा के मन को हरण करते हुए आनंद देते हैं वो जसोदा नंदन है जसोमती नंदन ब्रजवर नागर ब्रजवर नागर माने ब्रज के नागर कैसे नागर है वर नागर वर माने श्रेष्ठ माने क्या है रसिक रसिक नहीं होने से श्रेष्ठ नागर किसको कहते हैं नागरी होनी चाहिए नागरी के नागर नागरी किसको कहते हैं प्रतिभा भाव संपन्न जो गोपियां हैं जो गोपियां अपने पतियों को भी लुप्त कर और कृष्ण को सर्वस्व उन्होंने दे रखा है ऐसे को कहा जाता है नागर अब इसमें उनमें जितनी लीलाएं हैं ऐसी वो सब उसमें जैसे गोपियां शुद्ध पूजा करने के लिए जा रहे हैं राधा कुंड में मिल रहे हैं कुसुम स्वर में मिल रहे हैं ये सब जो राष्ट्र है सब इसके अंदर प्रजवर नागर गोकुल रंजन गोकुल को रंगने वाले कैसे रंगेंगे अपनी बाल्य लीलाओं के द्वारा अपनी किशोर लीलाओं के द्वारा अपनी और भी मनोहर अद्भुत लीलाओं के द्वारा चित्त को रंगा गोकुल में एक दिन कृष्ण सो रहे हैं छोटे से अभी बालक दांत भी अभी थोड़े से निकल रहे हैं एक फल बेचने वाली आई तो रोज 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 आती और श्याम सुंदर कहती गोविंद लो दामोदर लो माधव लो का गोविंद दामोदर माधव
ये सब कीर्तन करते हैं उनका दर्शन, किंतु उसको दर्शन जो दर्शन नहीं चाहता है उसको तो 50 बार देते हैं, और जो दर्शन चाहता है उसका दर्शन ही नहीं देते, जिसको जरूरत नहीं है, जिनकी उन पर आसक्ति नहीं है वो तो कोई बात नहीं, और जो दर्शन करना चाहते हैं प्राण दर्शन के लिए तो वो उसको दर्शन नहीं है। अब तो सोचा आज प्राण दे देंगे किंतु आज दर्शन करते हैं तन मन की सुख हो देखा, जैसे कृष्ण से रहा नहीं गया छोटे होकर के छोड़ करके, और नंग धड़ंगे अभी छोटे से बच्चे घुंघरू लगे हुए हैं यहाँ और पैरों में, थुमकते हुए इधर से ऐसे करते हुए गिरते पड़ते किसी प्रकार से नजर बचाते हुए घर से आए, आकर के वहां पर खड़े हो गए, अभी फल दो कहना जानते नहीं है? उल्टी पुल्टी भाषाओं में कुकुलाते हुए फल उसे मांगे, वो देखती रह गई तो देखती रह गई, ऐसा सुंदर उसने देखा रूप ये जीवन में कभी नहीं था, कभी की रह गई। कृष्ण ने उसका सर्वस्व ग्रहण कर लिया, कृष्ण का अरे देती नहीं है दो जल्दी से दो जल्दी से, तो कुछ लाए हो ऐसे ही ले लो जो फल, लौट गए और जा करके घर से घर में जो कुछ रखा था गेहूं हो कुछ उठा लिया और इन खेतों से सब कुछ दो एक दाने हाथ से लगे हमने ले आकर के छोड़ दिया उसकी टोकरी में, पर ये ऐसे नहीं दूंगी, तो एक बार माँ हमको कहेगा तुमने देखा जिसको देख तो नहीं रहा माँ का करके हमारी गोली में तुझे भी डर जाएगा तो दे देंगे, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं, देखा जी कोई नहीं देख रहा है, तो सुख चाहते हुए इधर उधर देखा तो गोली में बैठ गए और मैया कह दिया अब देख बस हाथों में जो कुछ है नीचे नहीं देखा, फल की तरफ नहीं देखा, उनके मुखारविंद की तरफ में देखती हुई, वो कितने आए दो एक फल हाथ भर गया और देखते देखते लौट करके चला गया, बस देखती रह गई, जब तक देखी तब तक तो गई, बस अब उठने की हिम्मत नहीं, शरीर की सुध बुद्धि खो गई, बहुत देर हो गई, उधर से कृष्ण चले गए भीतर मैया के अंचल में गिरा दिया और मैया ने एक एक फल सबको देना आरंभ किया, वो कम ही नहीं, सब लोग इतना मधुर स्वादिष्ट फल जो कोई खाया नहीं, कृष्ण ने ले लिया है ना उसका फल, अब सब दिया है, ऐसे कृष्ण को समर्पित यदि जीवन का फल जो कर्मों का फल है यदि अर्पण कर दिया जाए, कृष्ण ने ग्रहण कर दिया तो वो बड़ा मधुर हो जाता है, कृष्ण के लिए बड़ा आस्वादक होता है, दूसरों के लिए आस्वादनीय, और उसके कर्म बंधन को सब दूर करा करके कृष्ण के चरणों में सेवा भक्ति देने, इधर तो ये होता रहा और उधर कुछ देरों के बाद में थोड़ी सी होश हुई, टोकरी उठाई, देखा जी तो बड़ा भार है, खोल करके देखा तो एकदम रत्नों से फूल भरी गई टोकरी, फल नहीं तो रत्न भरे चले, उठा लिया, उठा करके जमुना के में टोकरी समेत डाल दिया, फिर जो कहाँ गई क्या हुआ कोई भी पता नहीं, और बतला ये कहाँ गई होगी, बावरी से प्रेम में ठगी हुई कृष्ण कृष्ण कहती हुई तन्मय हो गई होगी, कृष्ण उसे ग्रहण कर दी, फिर घर कभी नहीं लौटे, ऐसे ही इन लीलाओं का चिंतन करते हुए हरे कृष्ण कीजिए, इसको कहते हैं अपने अधिकार के अनुसार, नहीं तो ये छोटी बात्सल्य में छोटी सी ये लीला का वर्ण, ऐसे ही सब लीलाओं का समुद्र भरा पड़ा चित्त कहाँ जाएगा, और अभी जितने देर तक कहा चित्त कहाँ गया, कोई अनर्थ में नहीं गया कहीं नहीं गया, और एकदम फिर से जो ऐसे ही लीला का स्मरण करते हैं, एक मिनट समय का बर्बाद होना उनका जीवन प्राणांत हो जाता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ऐसे ही बैठ जाए। इसको भी हम लोग बहिरंग लीला मानते हैं। यह लीला जो है ना हमारे मन के अनुकूल नहीं है, हम लोग के अनुकूल क्या होगी?
या तो उन लीलाओं का बहुत ज्यादा श्रवण किया हो, अधिकता हो, तो धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाए। उसके लिए हमें मारा जाती है दो टूक बात।
गुरु इसी चीज को अपने शिष्य के अंदर में भरता है, यही शिक्षा। चाहे ना गुरु तो एक दिन में उसको एकदम कहां ले जाएगा, अन्य तो भटकते रहेंगे। अब तो संध्या आनी होनी चाहिए ना।
तो ये स्थिति अब हमें तो छोड़ने का दिल नहीं करता। लोग हैं शायद आपके साथ मुझसे फिर सब निकलने को खुले आने में और कोई सब निकलने
अच्छी लग बातें अच्छी लग रही है तो मैं अच्छी लगती है
जीवन भर में कभी मन काफी समझ आने लगा होगा कि कैसे काम में कहने के मिला, पर आपको जो समय मिलता है समझते हैं तो मैं मन आता है वो सब चीजें माइंड में से दौड़ने के लिए माला जाते बैठे सब वो चीजें आ जाती हैं ना ध्यान में। तो इसी तरह लीलाओं का वर्णन माइंड में आना चाहिए।
ये परिवार तो भाग्यशाली है, ये परिवार तो पूरा भाग्यशाली है, इसमें कोई सवाल नहीं।
जिस परिवार में आप हैं वो परिवार सौभाग्यशाली क्यों नहीं होगा? आप तो इस परिवार के अंग हैं, एक प्रधान अंग हैं। देखिए हमको आना हुआ, देखिए आप आ गए। खिलाना हुआ आप आ गए, अभी हरी कथा सुनना हुआ आप आ गए। आप कौन हैं? आपने इस परिवार को सींचा है,
सींचने के लिए परिवार का समझता हूँ महाराज। आप इसे समझ रहा हूँ लेकिन मैं अपनी कमी को बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ। आपको साधना सिद्धि के जरिए कृपा सिद्धि करने हाथ रखते गए मेरे। मैं अपना जीवन जितना व्यतीत किया महाराज वो बहुत ही दोषों से परिपूर्ण था। मेरे शरीर में साधना भक्ति वैधि भक्ति की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तपस्या बिल्कुल नहीं होती।
अब कुछ एक अंधकार हो गया है। अब हम भी थोड़ा सा
ये घंटा कौन बजाता है?
माते एक वरदान आपो के आवता जन्म मा हूं शत्रु पापा सा पति पत्नी बनी। हाँ बीजू के साथो साथ ये वरदान आपो कि जारे हमें पति पत्नी बनिए त्यारे अमारे घरे तमारा जेवा पुत्र नो जन्म थाय।
चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव
अमारे त्या तमारा जेवा पुत्र नो जन्म थाय आटली इच्छा। મનુ એ માંગણી કરી ભગવાને તુરંત તથાસ્તુ કહ્યું. સુની મનુ કે યહ વચન અમોલે નેવ મસ્તુ કરુણા નિધિ બોલે. તથાસ્તુ કહ્યું. મનુ નાચવા લાગ્યા, રોમ રોમ પુલકિત બન્યા, નેત્રમાંથી પાણીની ધાર થવા લાગી. ભગવાનથી ઉતાવળમાં તથાસ્તુ બોલાઈ ગયું. પછી ભગવાનને વિચાર થયો કે આપ સરીસ ખોજો કહાં જાઈ, આપ સરીસ ખોજો કહાં જાઈ, આપ સરીસ ખોજો કહાં જાઈ,
આપ સરીસ ખોજો કહાં જાઈ.
નૃપ તવ તનય હોવ મેં આઈ, નૃપ તવ તનય હોવ મેં આઈ. રાજવી, તમે મારા જેવા પુત્રની માંગણી કરી, મેં તમને તથાસ્તુ કહ્યું, પણ મનુરાજ મારા સમાન તો ક્યાં ગોતું, મારા સમાન જગતમાં કોઈ નથી. જાઓ રાજવી, હવે વચન આપ્યું છે એટલે કહી દઉં કે હું પોતે જ તમારો પુત્ર બનીને રઘુકુળમાં જન્મ ધારણ કરીશ. આપ મહારાજ અવધેશ બનશો, કૌશલ્યાજી બનશો, અને આપને ત્યાં રઘુવંશમાં રામ રૂપ ધારણ કરી હું આપનો પુત્ર બનીને પ્રગટ થઈ આપની ઈચ્છાઓને પૂરી કરીશ. મનુ નાચવા લાગ્યા. બસ મહારાજ ઇતના ચાહી. શત્રુપાજીને ભગવાને પૂછ્યું, માતાજી આપની કઈ ઈચ્છા? બોલે, હા મહારાજ, એક ઈચ્છા શું કે આપે અમારે ત્યાં પુત્ર આપવાની વાત કરી, પણ આ સાચું તો પડશે ને કે પછી ગયા જન્મમાં અમે ભૂલી જઈએ અને તમે વાત વિસારે પાડી દો? કારણ કે અમને નવાય લાગે કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો બાપ, સમગ્ર જગતનો પિતા અમારે ઘરે પુત્ર બનશે. બોલે, માં મારા વચન કદી નિષ્ફળ જતા નથી. ઈશ્વરના વાક્યો કોઈ દિવસ નિષ્ફળ નથી. એ બોલે પાડે, જીવ બોલે ફેરવી નાખે, અને ઘણા પાળે છે તો જુદી રીતે પાળે. કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો, ગુનેગારને ગુનાના પાંજરામાં ઉભો રાખીને ન્યાયાધીશે પૂછ્યું કે તારી ઉંમર કેટલી? પેલા એ કહું 35 વર્ષ. ઓચિંતા ન્યાયાધીશને એકદમ ખ્યાલ આવ્યો કે આ માણસ આના પહેલા 2 વાર ગુનો કરીને આ પાંજરામાં આવી ચૂકેલો, એને જૂનો રેકોર્ડ કાઢ્યો. તો 3 વર્ષ પહેલા આવેલો ત્યારે એને પૂછેલું પ્રશ્નો કરીને ઉંમર કેટલી, ત્યારે એને 35 વર્ષ કીધેલું. 2 વર્ષ પહેલા આવેલો ત્યારે પૂછેલું, ત્યારે 35 વર્ષ. ને આજ કીધું ત્યારે 35. ન્યાયાધીશ ગુસ્સે થયો કે 35 જ વર્ષ, વધતા જ નથી. કહ્યું કે હું એક વચની છું, બોલ્યો એ બોલ્યો, હવે એમાં કોઈ દિવસ ફેરફાર નથી. એ ગમે તેટલા 60 થાય તો હું તો 35 જ કહેવાનું, કારણ કે મારું બોલેલું બદલતું નથી. આ વચન પાલકતા નહીં. રામકાળે મારું બોલેલું નિષ્ફળ નથી જતું. આપ માંગો, આપની ઈચ્છા પૂરી થાય. માતાજી, હું તમને આજથી જ માં કહેવાની તૈયારી કરું છું. હું તમારે ત્યાં પુત્ર બનીને પ્રગટ થઈશ. બીજું વરદાન એક આપો, તમે અમારે ત્યાં પુત્ર બનીને આવો ત્યારે તમારા ભક્તને, તમારા સંતોને જે ગતિ, જે રહેણી કરણી અને જે આનંદ મળે તે બધું અમને મળવું. તથાસ્તુ કહ્યું. મનુરાજ સાવધાન થયા છે અને મનુએ બીજી માંગણી કરી છે, પ્રભુ તમે અમારે ત્યાં પુત્ર બનીને આવો ત્યારે તમારા ઉપર મને એટલો પ્રેમ જાગે કે જળ વગરની માછલી જેમ પ્રાણ છોડે તમારા વિયોગમાં મારું મૃત્યુ થાય એ પણ સાથો સાથ કહી દો. જન્મ તો માંગ્યો પણ મનુને ધન્ય છે, અમને પોતાનું મૃત્યુ પણ માંગ્યું. આપણે વારંવાર ચર્ચા કરીએ, મૃત્યુ કેટલા માણસો માંગે? કોઈ પૂજા કરે સવારે ત્યારે ભગવાનને છેલ્લે એમ કહે જ પૂજામાં કે જલ્દી લઈ આવ્યો મોતને, કોઈ નથી માંગતું આવું. અત્યારે તો મરવા માટે મુશ્કેલી છે. મારે અમદાવાદમાં કાંકરિયા તળાવ છે, એક જણો આપઘાત કરવા ગયો, નાપાસ થયેલો, આપઘાત કરવા ગયો. 2-4 જણા ઉભા તને અટકાયો, ક્યાં જા? કે પણ આપઘાત કરવો તો લાઈનમાં ઉભો રહે, અમે ક્યારના ઉભા છીએ? અમે સિનિયર છીએ તારા કરતા, લાઈનમાં આપઘાતની લાઈન છે. વાતો થાય ભાઈ કઠિન. ધન્ય છે મનુ જે મૃત્યુને માંગે છે. ભગવાને કહું તમારું પ્રારબ્ધ પૂરું થાય ત્યાં સુધી ઋષિઓની સાથે રહો, અને ઋષિઓની સાથે જીવન પૂરું થયા પછી સ્વર્ગમાં નિવાસ થશે, સ્વર્ગમાં પુણ્યો પૂરા થશે, પછી તમે અયોધ્યાના સમ્રાટ તરીકે પ્રગટ થશો. હું તમારે ત્યાં પુત્ર બનીને આવ્યો છું. અતિ આનંદ થયો. મનુ શત્રુપાની પાસેથી ભગવાન વિદાય થયા. શેષ જીવન સંતોની સાથે પૂરું કરી મનુ શત્રુપા પ્રારબ્ધ પૂરું કરી સ્વર્ગમાં નિવાસ કરે છે અને હે પાર્વતી બીજા જન્મમાં રઘુવંશમાં એને ત્યાં રામ પ્રગટે છે. આ રામ અવતારનું ચોથું કારણ. યહ ઇતિહાસ પુનીત અતિ ઉમહી કહેવું વૃષકેતુ ભરદ્વાજ તુમ અપર સુનુ રામ જન્મ કર હેતુ. છેલ્લું અને પાંચમું કારણ. વિશ્વમાં વિખ્યાત એવો એક કઈ કઈ દેશ હતો, કઈ કઈ દેશનો સત્યકેતુ નામનો રાજા હતો. એના બે પુત્રો પ્રતાપ ભાનુ અને અરિમર્દન. સત્યકેતુ ઉમર લાયક થયો એટલે પ્રતાપ ભાનુ ને ગાદી આપી અરિમર્દન ને યુવરાજ પદાચું. ધર્મરૂચિ નામનો પ્રધાન હતો એનું પ્રધાનમંત્રી પદ ચાલુ રાખીને સત્યકેતુ વનમાં જતા રહ્યા. પ્રતાપ ભાનુ રાજા થયો ત્યારે એની દુહાય ફરવા લાગી. એક વખત પ્રતાપ ભાનુ ચતુરંગીની સેના લઈ નીકળ્યો છે અને ધરતી ઉપર જેટલા રાષ્ટ્રો હતા એ બધા રાષ્ટ્રોને એને હરાવી અને દિગ્વિજય કર્યો. પ્રતાપ ભાનુએ ઘણા સત્કારીઓ કર્યા. આખી ધરતી ઉપર એક જ રાજવીનું રાજ્ય ને પ્રતાપ ભાનુ. એક દિવસ શિકાર કરવા નીકળે છે. શિકાર કરતા કરતા એક ભૂંડની પાછળ ઘોડાને દોડાવે છે. પ્રતાપ ભાનુ ને ખબર નહીં કે આ ભૂંડ પણ હતો એ રાક્ષસ કાલકેતુ નામ. પ્રતાપ ભાનુ ને એમ કે ભૂંડ છે, મારવા પાછળ દોડે છે કાલકેતુ નામનો રાક્ષસ. પ્રતાપ ભાનુ ને વિંધ્યાચળના જંગલમાં ભૂલા પાડે. પ્રતાપ ભાનુ ભૂંડની પાછળ દોડે છે એટલે ભૂલો પડે. તરસ લાગી, ઘોડાને તરસ લાગી, એકલો પડી ગયો પૃથ્વીપતિ. પાણીની તલાશ વિંધ્યાચળના જંગલમાં કરે છે તો ગોસાઈજી કહે એક આશ્રમ જોયો અને આશ્રમમાં એક કપટ મુનિ બેઠો છે. તુલસીદાસજી કહે કપટ મુનિની પાસે જઈને પ્રણામ કર્યા. કપટ મુનિ ઓળખી ગયો કે આ મારો દુશ્મન પ્રતાપ ભાનુ છે જેણે મારું રાજ્ય લઈ લીધું. એ રાજા હતો, સાધુ થઈ ગયેલો. પ્રતાપ ભાનુ એ પાણી પીધું, ઘોડાને પાણી પાયું, મહાત્મા માનીને એની પાસે બેસી ગયો. પેલો મહાત્મા તો મોટી મોટી યોગની વાતો કરવા લાગ્યો. પ્રતાપ ભાનુ એમાં આધીન થવા લાગ્યા. બાપજી મારા સદભાગ્ય કે તમારા જેવા સંતના દર્શન થાય. આપનું નામ શું? લાય કહું મારું નામ એક તનુ. એક તનુ એટલે બોલે બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી ત્યારે પહેલો વહેલો મને ઉત્પન્ન કર્યો અને મારે શરીર બદલવા નથી પડતા. કપટ મુનિ હોય ને એના ધડાકા આવા જ હોય. દુનિયામાં બે માણસો એવા છે કે એક વ્યક્તિ ઉંમર વધારે બતાવે તો સમાજ ઉપર પ્રભાવ પડે અને એક વ્યક્તિ એવી છે ઉંમર હોય એના કરતા ઓછી બતાવે તો પ્રભાવ પડે. એમાં કપટ મુનિઓ સાચા સાધુ નહીં, દંભી અને કપટ મુનિઓ. એ ઉંમર મોટી બતાવે તો જ પ્રભાવ પડે. ઘણા કપટીને તમે પૂછો મહાત્માના દેખાવમાં હોય બાપુ આપની ઉંમર ક્યારે, હમકો ગિનતી કહાં આતી હૈ, આમ નહોતું ગણતો, આમ કે મને ગણતરી ક્યાં આવડે, હમકો તો ગિનતી હિ નહીં આતી. બોલે પણ કાંઈક ઉંમર, ઉંમર કી ગિનતી કહાં હમકો પતા, લેકિન ઝાંસી કી રાની જબ રણ મેદાન મેં યુદ્ધ કર રહી થી તબ મેરી ઉંમર 300 સાલ કી થી. પછીનો હિસાબ આપણે મારવાનો. કપટ મુનિ નું આવું જ કામ હોય, બહુ લાંબી ઉંમર અને નૃત્યાંગના હોય. નૃત્ય કરીને પુરુષોને મોહિત કરનારી સ્ત્રીઓ એ ઉંમર હોય એના કરતા ઓછી બતાવવાની કોશિશ કરે તો સમાજ ઉપર પ્રભાવ. એક રાગી અને બીજા વિરાગી. રાગી ઉંમર ઓછી બતાવે તો પ્રભાવ પાડે અને વિરાગી ઉંમર લાંબી બતાવે તો પ્રભાવ પાડે. આ કપટ મુનિએ કહ્યું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું ત્યારનો પહેલો વહેલો હું ઉત્પન્ન થયો અને ત્યારથી અહીં નહીં બેઠો છું, મારે મરવું નથી પડતું. અહીંયા બેઠા બેઠા આખી દુનિયાને જાણું છું. માંગ તને શું આપું? પ્રતાપ ભાનુ માંગવા તૈયાર થયો. બાપજી આપવું હોય તો એટલું આપો, મારા શરીરને ગળપણ લાગુ ન પડે, મારું મૃત્યુ ન થાય, મને ધીંગાણામાં કોઈ જીતી ન શકે. તથાસ્તુ. કપટમુનિ બધામાં તથાસ્તુ કહે. કપટમુનિની પાસે તથાસ્તુનો જથ્થો બહુ હોય. ખોટા માણસો હોય ને એની પાસે તથાસ્તુ ખૂબ હોય. જેટલું માંગ્યું એમાં તથાસ્તુ કીધું. તને કોઈ મારી નહીં શકે પણ તારે એક કામ કરવું પડશે, બ્રાહ્મણોને વશ કરવા પડે. એટલે બ્રાહ્મણોને કેમ વશ કરવું? એક રીત છે, હું રસોઈ બનાવું અને તું બ્રાહ્મણોને જમાડે તો મારી મંત્રમય રસોઈ જેટલા બ્રાહ્મણો જમશે એ તારે આધીન થશે અને પછી તને દુનિયામાં કાળ પણ મારી દઈશ. બાપજી તો મારે ત્યાં પધારો, બોલે હું તો આવી શકું નહીં પણ હવે તારો પ્રેમ છે એટલે આવ્યા વગર એ છૂટકો. ની ખેર હું કાલે મારે માયાથી તને તારા અશ્વ સહિત તારા નગરમાં મોકલી દઈશ, તારા ઉપરોહિતનું અપહરણ કરીને અહીં લઈ આવી અને હું પોતે ઉપરોહિતના રૂપમાં તારે ઘરે આવીશ. પ્રતાપ ભાનુને કહ્યું સુઈ જા. રાજવી સુઈ ગયો. કપટ મુનિ માં કઈ હતું નહીં. કાલકેતુ નામનો રાક્ષસ જે ભૂંડ બનીને રાજાને ભૂલો પાડી ગયો, એ આ કપટ મુનિ ને મળવા આવ્યો. બંને જણા એ માયા કરી કાલકેતુ રાક્ષસ પ્રતાપભાનુનું અપહરણ કરી નગરમાં મૂક્યા. એના ઉપરોહિતને આશ્રમમાં લઈ આવ્યો અને કાલકેતુ ઉપરોહિતનું રૂપ લઈને ઉપરોહિતની પથારીમાં સૂઈ ગયો. રાજાએ સવાર પડતા મહેલ જોયો, ખાતરી થઈ ગઈ કે મારા ગુરુદેવ સમર્થ છે.